हाँ जी हाँ
आत्मा
सो परमात्मा आत्मा सो परमात्मा जो बोलते हैं वो वास्तव में एक ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच परम पाटधारी हीरो पाटधारी है वो परमात्मा है। उस आत्मा का भी बाप परम पिता है इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे कभी नहीं कहा जाता परमात्मा परम पिता। क्यों? क्योंकि बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद में। शिव शंकर शिव बड़ा है और शंकर छोटा है। ऐसे कभी नहीं कहते शंकर शिव। कहते हैं? नहीं कहते। यही बात गीता में भी लिखी है। क्या? कि दुनिया में दो प्रकार की आत्माएं हैं, पार्ट बजाने वाली। एक तो है क्षर माना क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, सुख भोगते भोगते सतयुग के पहले जन्म से ही चाहे ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगे चाहे कर्मेंद्रियों से सुख भोगे, सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षरित होती रहती है। तो वो साफ 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं क्षर हैं, लेकिन उन आत्माओं के बीच में एक ऐसी आत्मा भी आकर के पार्ट बजाती है जो अक्षर है माना पतित दुनिया में आती है, पतितों के बीच में आती है, पतितम कामी कांटे में आती है, फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता। बाकी जितने भी धर्म पिताएं हैं कोई भी बड़े से बड़े हुए हों इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि सब इस दुनिया में आकर के क्षरित होते जाते हैं और नीचे गिरते जाते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं और उनकी सारी जनरेशन फॉलोअर्स नीचे गिरते जाते हैं। और मैं मना शिव ऐसी अक्षर आत्मा है कि पतित दुनिया में आने के बावजूद भी, पतितों के बीच में आने के बावजूद भी, कैसे पतितों के बीच में आता हूँ, जहाँ वो पतित इकट्ठे होते हैं उस जगह का नाम ही रख दिया है माउंट आबू। क्या? ऐसी बदबू वाली क्षरित होने वाली आत्माएं हैं जिनका संगठन जब तैयार होता है इस दुनिया में तो उस स्थान का नाम क्या रखते हैं? माउंट आबू। बदबू छोड़ने वाली आत्माओं का पहाड़ बन जाता है। ऐसी आत्माओं के बीच में आता हूं तो भी मेरे को उनका संग का रंग नहीं लगता। किसको? शिव परमपिता। तो वो अक्षर है, इस दुनिया में आकर के भी अक्षर है, परमधाम में जाता है तो भी अक्षर है, क्षरित नहीं होता, पतित नहीं होता। अच्छा, फिर तो उसे देवताओं की दुनिया में रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए है? रहना चाहिए। अरे वो भोगता है या अभोगता है? अगर भोगेगा सुख और दुख तो चरित भी होगा। जैसे और आत्माएं सुख दुख भोगती हैं तो चरित होती हैं, पतित होती हैं। लेकिन वो सुप्रीम सोल भोगता नहीं है, इस दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, पतित तन की इंद्रियों से काम भी करता है, लेकिन पतित नहीं होता। क्यों नहीं पतित होता? क्योंकि अभोक्ता है। पतित में प्रवेश करने के बावजूद भी भोगता नहीं है। क्या नहीं भोगता? इंद्रियों का सुख नहीं भोगता। इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी इसलिए है कि वो अच्छे बुरे कर्म भोगता ही नहीं, अच्छे बुरे कर्म करता ही नहीं। वो अभोगता है, अकर्ता है, इसलिए अक्षर है। और जो भोगते हैं, कुछ न कुछ करते हैं अच्छा बुरा, तो चरित भी होते हैं। तो देखो, मैं परम पिता हूं, क्या जो भी आत्माएं हैं उन सब आत्माओं का परे ते परे रहने वाला बहुत शक्तिशाली, कैसा शक्तिशाली? ऐसा शक्तिशाली जो कभी भी क्षरित नहीं होता। इसलिए भक्ति मार्ग में मेरा गायन है पूर्णमिदम्। ये पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णम् यदुच्यते। और ऐसा पूर्ण है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लो तो भी पूर्ण ही बचता है। वो चरित तो होता ही नहीं। क्या चीज पूर्ण बचती है? वो ऐसा ज्ञान और योग का खूट भंडार है जो कभी खूटता ही नहीं। और जो आत्माएं रूपी बैटरी है उनका योग बल भी छीण होता है और ज्ञान बल भी छीण होता जाता है। मैं अखूट हूं, अक्षर हूं, लेकिन जो भी क्षरित होने वाली आत्माएं हैं उनके बीच में एक ऐसी आत्मा भी है जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पाटधारी है। कैसी आत्मा? परम पाटधारी। कोई कहेगा कि आत्माओं के बीच में परम पाटधारी तो शिव भी है, परंतु बाप कहते हैं मैं तो किसी गिनती में नहीं आता हूं। जो गिनती में आवे वो चक्कर में भी आवे, मैं तो 84 के चक्कर में आता ही नहीं। हाँ, 84 के चक्कर में आने वाली आत्माओं के बीच में जो परम पाटीदारी है, हीरो पाटीदारी है, वो परमात्मा है। कैसी आत्मा? हाँ, परम पाटीदारी आत्मा। मेरे को उन आत्माओं के बीच में नहीं रख सकते। मैं हीरो पाटीदारी नहीं हूं इस दुनिया में। इसलिए बाप बोलते हैं कि इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। क्या जिसे तुम शिव बाबा कहते हो मुझे तुम बाबा नहीं कह सकते? कब? जब मैं परमधाम में बैठा हूँ तो मैं आत्माओं का बाप हूँ या आत्माओं का बाबा हूँ? ग्रैंडफादर, बाप हूँ। तुम आत्माओं के साथ मेरा सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध है, बच्ची का भी संबंध नहीं। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर जब परमधाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आता हूँ तो जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ उसके साथ तुम बच्चों के अनेक संबंध बन जाते। मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, साजन भी बनता हूँ, सजनी भी बनता हूँ, मैं सब कुछ हूँ, सब संबंध। लेकिन परमधाम में मैं सिर्फ तुम्हारा बाप, तो मुझे कहेंगे शिव बाप। क्या? शिव बाप। जब साकार मनुष्य तन में आता हूँ तो शिव बाबा। तो शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं है। कौन सदा कायम है? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। भले कोई पहचाने या न पहचाने, 84 जन्मों में सदा कायम होने के बावजूद भी कोई पहचान भी जाते हैं। कैसे कैसे पहचान जाते हैं? आठ आत्माएं तो ऐसी हैं, अष्टदेव जिन्हें कहा जाता है, वो जन्म जन्मांतर शिव बाबा के साथ ही रहती है। क्या? साथ ही रहती है। सिर्फ अंतिम जन्म में माया उनको भी अपना बना लेती है, नीचे गिरा देती है। क्योंकि अगर अंतिम जन्म में नीचे न गिराए तो जो नीचे नहीं गिरेगा वो ऊपर भी नहीं उठेगा। इसलिए कुछ आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर मेरे को पहचानती है शिव बाबा के रूप में, और साथ छोड़ती नहीं। तो उस आत्मा को कहा जाता है शिव बाबा या परमात्मा। गीता में भी कहा है तीसरी और भी एक आत्मा है परमात्मा इति उदाहरत है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। परम पिता नहीं, क्योंकि उस आत्मा का भी बाप परम पिता शिव है। क्या? शिव बाप। इसलिए शिव शंकर कहा जाता है। नाम शंकर बाद में क्यों दिया? 33 करोड़ देवताओं में से किसी देवता का नाम क्यों नहीं दे दिया? 500-700 करोड़ मनुष्यों में से किसी का नाम क्यों नहीं दिया? है? क्योंकि आत्माओं के बीच में, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में एक वही आत्मा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। कौन आत्मा है? शंकर जिसे नाम कहा जाता है और उसी आत्मा का नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है और कोई भी आत्मा का नाम मेरे साथ नहीं जुड़ता। जो त्रिदेव हैं, जिन तीन देवताओं के साथ ही मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, उनमें से भी ब्रह्मा का नाम मेरे साथ नहीं जोड़ा जाता, विष्णु का नाम भी मेरे साथ नहीं जुड़ता, सिर्फ शंकर का नाम मेरे साथ जोड़ा जाता। इसलिए भारत में भी परंपरा है, कोई कंपनी बनाते हैं तो बाप का नाम देते हैं और लिख देते हैं एंड सन्स कंपनी। बाप अगर शरीर छोड़ता भी है तो जो बाप के बच्चे हैं उनमें जो बड़ा बच्चा होता है उसके नाम से वो नाम ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि भारत में बड़े भाई को बाप समान मानते हैं। और
बाप का राज्य है,
हाँ सचिव में
सचिन चैतन्य में बाप का राज्य,
बाप का राज्य,
और द्वापर कलयुग में माया का राज्य,
माया रावण का राज्य है।
हाँ हाँ आधार है इसका, क्यों बाप बड़ा है ना, बाप को ज्यादा शक्तिशाली है ना,
इसलिए
माया में इतना शक्ति जाता है बाप।
हाँ इतना शक्ति नहीं जाता है जितना बाप की शक्ति है, क्योंकि बाप माया के ऊपर विजयी होता है या माया रावण बाप के ऊपर विजयी होता है,
माया रावण
विजयी होता है, बाप आए माया रावण से युद्ध होता है। दुनिया में भी युद्ध होता है ना, जो जीतता है उसका राज्य चलता है या जो हारता है उसका राज्य चलता है,
जीतता है उसका राज्य।
तो बाप आते हैं माया रावण से युद्ध करते और बच्चों का कराते हैं तो कौन जीत पाता है, तो किसका राज्य चलता है,
बाप का राज्य।
तो बाप के राज्य के मुकाबले माया को पहले कैसे रखेंगे, माया बाद में, वो बाद में, इसलिए कि बच्चे हराए देते हैं, बाप नहीं हारता, बच्चे हराते हैं। कैसे हराते हैं, सारी दुनिया एक तरफ और वो राम बाप एक तरफ हो जाता है। राणा प्रताप को देखो, दूसरे राजाओं ने राणा प्रताप का सहयोग दिया है, नहीं दिया, तो सारी दुनिया एक तरफ हो गई और एक बाप और बाप का राज्य एक तरफ हो गया।
माया के इतने जिद्दी क्यों थे,
इतनी नहीं, बाद में, हाँ पहले बाप का राज्य आता है। माया को ताकत इसलिए मिलती है कि जो बाप के बच्चे हैं वो द्वापर युग से द्वैतवादी बन जाते हैं, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाप के बच्चों ने ही भारत को धोखा दिया, तो बाप इसमें क्या करेगा, बाकी बाप तो अजय है, उसको माया हराए नहीं सकती।
बच्चों का हालत नहीं है,
वही तो, बच्चे नंबर वन शक्तिशाली हैं और बाप तो बाप ही है। और हाँ जी,
इस समय में हिंदू मुस्लिम में भाई भाई थे ना, इस समय में मुस्लिम आत्मा थोड़ा डालता है, पाव लड़े है ना, पाव लड़े, इस समय में मुस्लिम आत्मा तो नशा को पड़ता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, जब कहा जाता है कि आपस में भाई भाई, अरे
सिचुएशन ऐसी है,
है?
सिचुएशन की परिस्थिति ऐसी है
हाँ?
हम जो मुस्लिम आत्माएं हैं उनको अपने ओम शांति के बारे में कुछ भी बता सकते हैं कि नहीं सकते?
बताओ। लेकिन वो जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो किसी की बात सुनते ही नहीं। जो क्रिश्चियंस अपने धर्म के पक्के हैं वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये तो हिंदू हैं, भारतवासी हैं, जो सबकी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। जो गुरु आया उसने जो सुनाया सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान।
हमारे बात सुनते हैं
वो दूसरे धर्म वाले अपने धर्म पिता की बात मानेंगे, दूसरों की बातें नहीं मानेंगे। ये तो वो हैं जो हिंदू धर्म से और धर्मों में कन्वर्ट हो गए थे, वही और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले अभी आकर के ब्राह्मण बने हैं नौकुरियों के।
दुबई में काम करके वापस आए हैं, ये समय में बोलते हैं तो नहीं बोलता है
बोला।
अच्छा, और
जब आप
पूरी बात कह लेने दो, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ,
आत्मा से जब शरीर से जब आत्मा चली जाती है और बाहर से जब देखते हैं मैं आत्मा से निकल जा रहे
हैं,
शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को स्मृति होती है नहीं?
आत्मा देखती है कि नहीं अपने शव को?
उसको आंखें हैं ही नहीं तो देखेगी कहाँ से? अरे शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं, जब तक शरीर धारण नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे देखेंगे, बच्चों की बात कैसे सुनेंगे? मुख धारण नहीं करेंगे तो मुख से बोलेंगे कैसे अपनी बात? आत्मा को आत्मा को माइक चाहिए, यंत्र चाहिए। ये यंत्र ये शरीर है। और पौंड्रिक कृष्ण,
पौंड्रिक वासुदेव,
पौंड्रिक वासुदेव माने डुप्लीकेट कृष्ण। क्या डुप्लीकेट कृष्ण? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में डुप्लीकेट कृष्ण कौन है? सतयुग का कृष्ण है या संगम युग का कृष्ण है? सतयुग का कृष्ण डुप्लीकेट कृष्ण है। और
प्रजापति दोनों का अंतर क्या?
पिता पहले होता है जन्मदाता या पति पहले होता है? तो जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं और जिस मनुष्य के द्वारा ज्ञान का बीज डालते हैं तो प्रजापिता है। वो ही पिता अंत में जब बच्चे पढ़ लिख करके होशियार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उन बच्चों को वर्षा देता है बाप है, वर्षा देता है तो भी बाप है। लेकिन पति उसे कहा जाता है जो बाप की बच्चियां होती हैं। क्या बच्चियां? वो बच्चियों के साथ ऐसा कनेक्शन जोड़ता है तो पति कहा जाता है। जैसे विश्वपति, विश्वपति पहले या विश्व का पिता पहले?
पिता पहले
और लास्ट में पति कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में अंतिम समय का गायन है प्रजापति। शास्त्रों में प्रजापिता नहीं गाया हुआ है, प्रजापति गाया हुआ, जब विश्व का मालिक बन जाए, सारे विश्व का पति। पति माने रक्षक, पाते रक्षा करने वाले को पति कहा जाता है। और
दक्ष प्रजापति कहते हैं ना,
बताया ना, दक्ष इसलिए कहते हैं कि वो ट्रेंड है, दीक्षित है। दक्ष माने ट्रेंड, किस बात में ट्रेंड है? प्रजा को पालन करने में ट्रेंड है, प्रजा को नहीं। जो अहंकार में दिखाया गया है वो टाइटलधारी प्रजापति है। क्या यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में एक टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा और एक ओरिजिनल प्रजापिता ब्रह्मा? जो टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा बनता है वो बीच में ही शरीर छोड़ देता है, सारी प्रजा उसको अपना बाप नहीं मानती। और जो असली है वो अंत तक है, जब तक इस सृष्टि पर 500-700 करोड़वी प्रजा है वो इस सृष्टि पर ही रहेगा। बाप का काम है बच्चों की रक्षा करना। ऐसा बाप किस काम का कि घर में आग लगे खुद भाग जाए और बच्चे जलते भूनते रहें? तो इस सृष्टि में आग लगने वाली है वो सच्चा बाप है, सच्चा पातशाह कहा जाता है वो बाप। इस सृष्टि में जब विनाश लीला आती की होती है, महाविनाश होता है, चारों ओर आग ही आग का नजारा होता है, तो इस सृष्टि में कायम रहता है। एक एक बच्चे को निकाल करके शांति धाम में ले जाता है। झाड़ के चित्र में कौन बैठा हुआ है, क्या करता है? आत्माओं को खींच खींच करके, जो आत्मा रूपी बच्चे हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, वो उसके बच्चे हैं। उसमें परमपिता प्रवेश है तो डबल बाप है, मनुष्यों का बाप भी है और आत्माओं का भी बाप है। वो बच्चों को साथ लेकर के जाएगा, इस दुनिया में छोड़ करके नहीं जाएगा। और बाप जिस घर में रहता है आत्माओं का बाप, वो ही परम धाम कहा जाता है। एक है सिर्फ आत्माओं का बाप, और वो आत्माओं का बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो भी मुकर्रर रथ में आता है या एक्स वाई जेड सभी में आता है, तो तो वो ही परम धाम हो गया, बाप के रहने का घर हो गया। इसलिए बाप कहते हैं बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। तो अब एक को याद करें या तीन तीन को याद करें, माने जिस तन में आता है वो घर भी है बाप का, दूसरा कोई घर नहीं है शरीर रूपी, मुकर्रर रहते है। और वो जो घर भी है वो स्वर्ग भी है, क्योंकि बाप के पास जो रहेंगे याद में बुद्धि से वो सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, स्वयं स्थिति में रहेंगे तो स्वर्ग में रहेंगे या नरक में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। बाप तो कहते हैं बच्चे ये संगम युग सारा ही मौजों का युग है, लेकिन कब, जब बाप के घर में हम बैठे, बाप की याद में रहे। बाप का घर है इस संसार में साकार या निराकार, साकार में है तो घर भी है, स्वर्ग भी है। जो नजदीक रहेंगे वो सुखी अनुभव करेंगे, दूर बाज होंगे तो दुखी होंगे। और है जो आदमी सो अंत में, हाँ विनाश होने के बाद बर्फ में कौन दब जाता है, आत्मा दब जाती है या शरीर दब जाता है? आपका ध्यान शरीर के ऊपर है या आत्मा के ऊपर है? तो आत्मा जब बाप के घर से आएगी तो सत्व प्रधान दुनिया में आएगी, सत्व प्रधान पांच तत्वों के बीच में आएगी या तमो प्रधान तत्वों के बीच में आएगी? ठीक, हाँ, उस समय सारी दुनिया सत्व प्रधान होगी। तुम बच्चे योग बल से पांच तत्वों को भी सत्व प्रधान बनाते हो, अरे पांच तत्व सत्व प्रधान बनेंगे तभी तो तुम्हारा शरीर भी कंचन काया बनेगा। ये कहाँ से 18 वर्ष आपने उठाए? ये 18 वर्ष कहाँ से उठाए, कौन सी मुरली से? तपस्या अभी नहीं कर रहे हैं। बाबा ने कहा अपन को आत्मा समझना यही तपस्या है। क्या आत्मा समझेंगे तो देह का सुख अनुभव नहीं होगा। कब से लागू करें? अरे जब से बाप को याद करते हैं तब से ही हमारी तपस्या है। बाप को याद ही तब करेंगे जब अपन को आत्मा समझेंगे। आत्मा को समझना ही यही तपस्या है हमारी। तत्व तत्व कहते हैं सार को। क्या सार को? इस सृष्टि में पांच एलिमेंट जो हैं वो ही सत्व हैं, तत्व हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जो ब्रह्म तत्व है वो तुरिया तत्व है, वहाँ पांच तत्व की पहुंच नहीं है, वो अलग है। जिस तुरिया तत्व में सिर्फ आत्मा ही रह सकती है, शरीर नहीं जा सकते। और हाँ
माया दुनिया में कमलों है, इसलिए सब माया दुनिया हो गए हैं। ये माया दुनिया में कमलों रहना जरूरी है क्या?
माया की दुनिया में रहना जरूरी है? माना शरीर नहीं चाहिए? माया माने क्या? मा आया, माया का मतलब ना आया होता तो अच्छा था, लेकिन ये आता है। कब आता है? जब द्वैतवादी दुनिया बनती है तो माया आती है। सतयुग में द्वैतवाद नहीं था, देवताएं अद्वैत थे, एक धर्म, दूसरा कुछ था ही नहीं, एक भाषा, दूसरी भाषा थी ही नहीं, एक मत, दूसरा मत था ही नहीं, एक राज्य, दूसरा राज्य था ही नहीं, एक राजा, दो दो राजाएं होते ही नहीं। ये द्वैत भाव जो है वो ही माया का रूप है। देखो इस शरीर में कहते हैं चारों ही युग समय हुए। विष्णु का मुख है वो सतयुग कहा जाता है, और मुख के नीचे जो धड़ है, हाथ है और नाभि तक का पेट है वो त्रेता कहा जाता है। नाभि के बाद फिर द्वैतवाद शुरू होता है, दो टांगे अलग अलग हो जाती है। ये द्वैतवाद का क्लियर रूप सामने आ गया। फिर जो घुटने हैं उनके नीचे जो स्वरूप है वो कलयुग है। सारा पापों का बोझ कलयुग में जाकर के गिरता है। कलयुग के बाद एड़ी है, वो कलयुग का अंतिम हिस्सा है जो संगम में ऐड होता है। एड़ी से लेकर के चोटी तक, ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है ना, तो एड़ी से लेकर के चोटी तक ये सारा संगम है। ब्राह्मण ऊंच माने जाते हैं, ब्राह्मण देवता कहा जाता है, ब्राह्मणों के पांव पूजे जाते हैं, उनको ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। चोटी माने सबसे ऊंचे, तो नंबर वार ऊंचे होंगे ना। पहला नंबर कोई ब्राह्मण होगा या नहीं होगा, वो ही अब्बल नंबर चोटी हुई। जो अब्बल नंबर चोटी है उसकी यादगार इस दुनिया में ऊंची से ऊंची चोटी का नाम क्या है? पहाड़ की ऊंचे से ऊंची चोटी नहीं, वो पहाड़ है, पहाड़ों की चोटी होती है एवरेस्ट, एवर ईस्ट। हाँ, इसलिए जो अष्ट देव दिखाए जाते हैं उनमें जो भगवान के रूप में माना जाता है कौन दिखाया गया है? शंकर को दिखाते हैं, वो एवरेस्ट है। पूर्वी सभ्यता को फॉलो करने वाला है, और निकलता भी पूरब से है। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। उसको कहा ही जाता है सारे संसार की कल्याण करने वाला सूर्य, उसको फॉलो करने वाली सूर्यवंशी। और क्यों नहीं समझता? जो ड्रामा रिपीट होता है वो ड्रामा हमको 84 जन्म का पता है, है? बाद में पता चलेगा, अभी पता है। जब पता ही नहीं है तो अच्छा संकल्प करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही ड्रामा बनेगा। नेगेटिव संकल्प करेंगे तो खराब ड्रामा बनेगा। हमारा भाग्य भगवान ने हमारी मुट्ठी में दिया है, ड्रामा की बात बता करके। क्या ये ड्रामा हूबहू रिपीट होना है? जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा ही हमारा ड्रामा बनेगा। और इस दुनिया में ड्रामा बनाने वाले नंबर बार होंगे या एक जैसे होंगे? बड़े से बड़ा ड्रामाबाज कौन है? जोर से बोलो। व्यास। बी माने विशेष, आस माने बैठ जाए। जो व्यास गद्दी पर विशेष रूप से ज्ञान सुनाने के लिए बैठ जाए, व्यास ने क्या किया? सबसे जास्ती शास्त्र किसने बनाए? व्यास ने बनाई। पहला शास्त्र किसने बनाया? व्यास ने बनाया। गीता में लिखा हुआ है व्यास प्रसादात। क्या? व्यास के प्रसाद से ये गीता ज्ञान मिलता है। तो पहला जो शास्त्र है वो वेद नहीं है, पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, जो व्यास ने लिखी। यहाँ ब्रॉड ड्रामा में वो शास्त्र लिखने की शूटिंग करता है, शास्त्र लिखता है, और शूटिंग पीरियड में संगम युग में उसकी बुद्धि में उसके मुख से वो शासन तंत्र निकलता है जिसका नाम गीता माता है, गीत है, इसलिए गीता है। वो गीता ज्ञान कहाँ से निकला, किसके मुख से निकला? वो ही व्यास जिसके लिए बोला भारत, बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। संगम युग में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है तो ब्रॉड ड्रामा में भी क्या करेगा? है ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। वो है बड़े से बड़ा ड्रामाबाज। अच्छा ड्रामा बनाएगा या खराब ड्रामा बनाएगा अपने लिए? अच्छा ड्रामा बनाता है। अच्छा ड्रामा कैसे बनता है? अपनी आत्मा के लिए बुरा ड्रामा कैसे बनता है? है
आपने जो कर्म करते हैं कर्म के साथ
कर्म कौन सिखाता है? अपनी बुद्धि से कर्म होते हैं, पूर्व जन्म से कर्म होते हैं। संगम युग में बाप आकर के कर्मा कर्म विकर्म की गति समझाते हैं गीता ज्ञान के द्वारा। बाप ने हमको कर्म क्या है और विकर्म क्या है ये समझाया या नहीं समझाया? तो जो ज्ञान को गहराई से उठाते हैं वो जन्म जन्मांतर अलर्ट रहते हैं कि हम ज्ञान युक्त कर्म करें, अज्ञान युक्त कर्म न करें। अज्ञान रावण से आता है और ज्ञान एक भगवान से आता है। तो भगवान जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर जो चलते हैं, तन मन से, धन से, समय संपर्क संबंध की पूरी बाजी लगाकर जो चलते हैं वो ज्यादा सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे? ज्यादा सुखी रहेंगे। और चालीस वर्ष संगमी की शूटिंग सिर्फ 40 साल होती है, 100 साल नहीं होती है। सतयुग की शूटिंग का मतलब है कि सत्वगुण में टिकने वाली जो आत्माएं हैं 2 करोड़, वो 2 करोड़ आत्माएं ज्ञान में जब तक आती हैं तब तक सतयुग की शूटिंग होती है। 1973 में जो ज्ञानामृत पत्रिका निकली उसमें लिखा हुआ है कि अब तक 1 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिला, उसके बाद 73 से लेकर के बड़े बड़े मेले लगना शुरू हो गए बड़े बड़े शहरों में, और एक एक शहर में और मेलों में आने वालों की संख्या लाखों की तादाद में होती थी। पहला मेला 73 के अंत में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हुआ और दिल्ली को सब फॉलो करते हैं, तो सभी शहरों में बड़े बड़े मेले हुए 73 से लेकर के 76 तक, और 76 तक 1 करोड़ आत्माओं को फिर संदेश मिल गया। तो सतयुग में कितनी आत्माएं होती हैं? 2 करोड़। 2 करोड़ की शूटिंग हो गई, 2 करोड़ को संदेश मिल गया, प्रजावर्ग में आने वालों की संख्या निश्चित हो गई। और हाँ, बोल लो पूरा हो गया। हाँ क्या बोला? हाँ हाँ जी, निश्चित हो जाती है
वो बहुत पसंद है, ब्रह्म बाबा पसंद है और सुश्री जानकी।
दुनिया में भी जो औलिया होते हैं वो औलिया बताते हैं कि वो भूत आत्मा कब आवेगी, प्रेत आत्मा कब आवेगी, उनको वो प्रेत आत्मा ही बताती है, और जब बताती है तो वो अपने भक्तों को बता देता है कि इस दिन आना तो तुम्हारी बीमारियां ठीक करेंगे। ये भी भूत आत्मा है, भूत माने सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा। तो ब्रह्मा वाली आत्मा का जो प्रभाव है वो कोई के ऊपर विशेष होगा या नहीं होगा? है तो जिसके ऊपर ज्यादा प्रभाव था, ज्यादा आकर्षण था, उसी में आना शुरू कर दिए। मुरली में आया है, गुलजार दादी पहले बच्ची थी, बहुत आकर्षक बच्ची थी, ब्रह्मा बाबा उसे बार बार अपनी ओर बुलाते थे और वो भाग जाती थी, कभी बाबा के नजदीक नहीं आई। फिर जब कमला नगर सेंटर खुला तब तक वो नौजवान हो गई, और कमला नगर जो पहला सेंटर दिल्ली का खुला उसमें जगदीश भाई के साथ उसे सेवा करने के लिए कमला नगर सेंटर में भेज दिया गुलजार दादी को, और लंबे समय तक सेवा चलती रही बेसिक ज्ञान की। तो बाबा के आकर्षण में नहीं आई, बाबा का एक तरफा प्यार उस बच्ची की तरफ रहा, रहा या नहीं रहा, जीवन भर जब है उस बच्ची के प्रति प्यार रहा और बाबा ने अचानक शरीर छोड़ दिया, तो ब्रह्मा वाली आत्मा स्वतंत्र हो गई शरीर से या बंधन में रही, स्वतंत्र हो गई और वो गुलजार दादी में प्रवेश करने लगी, आकुपाई कर लिया। तो ऐसे ही है, है ब्रह्मा की सोल खुद ही निश्चित करती है इस टाइम पर इस दिन आएंगे। और हाँ रुको, है हाथ उठाओ, हाँ हाँ विष्णु को छह भुजा नहीं दिखाते, हाँ चार भुजाएं दिखाते, जगदम्बा को आठ भुजाएं दिखाते, जो जो आठ देवियां हैं वो ही सहयोग देती हैं, इसलिए अष्टभुजाधारी जगदम्बा दिखाई जाती है। जगत में सभी धर्म होंगे या एक दो चार होंगे, तो सभी धर्मों में आठ नौ धर्म मुख्य हैं, जो जगदम्बा है वो मुखिया हो गई, और बाकी जो आठ धर्मों की कन्याएं हैं जो संगम युग में ब्रह्मा कुमारी बनकर के देवियों की शूटिंग करती हैं, पुरुषार्थ करती हैं, वो उनकी भुजाएं बनती हैं, सहयोगी बनती हैं, इसलिए जगदम्बा को वो आठ भुजाएं दिखाते हैं। नौ देवियों की पूजा होती है ना, तो एक जगदम्बा और आठ सहयोगी शक्तियां वो भुजा के रूप में दिखाई जाती है। और
विनाश के बाद, विनाश के कुछ दिनों के बाद है, बाप मरण धाम जाता है ना, इसलिए विनाश के बाद है, बाप कुछ दिनों के बाद मरण धाम जाता है, और सेंटर में हर आत्मा को बाहर है मरण धाम और बाद में सुल्तान जाना पड़ेगा,
ये किसने बोला? जब तक जीना है, जब तक जीना है तब तक पीना है, मना देह भान में जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान जल पीते रहेंगे। तो देह भान में एक मिनट, देह भान में कब तक जीते रहेंगे? साढ़े चार लाख बीज हैं, सारी दुनिया के साढ़े चार लाख बीज हैं या सिर्फ सूर्यवंशी के बीज हैं? सारी दुनिया के बीज, और सारी दुनिया को 36 तक बाप को पहचानना है या पहले ही पहचान जाएंगे? तो वो बीज रूप आत्माएं जो बाप के रूप में है, अंतिम बीज रूप है, वो वहां तक अपना पार्ट बजाएंगे, वो प्रजावर्ग की चौथे किस्म की आत्माएं है। कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, कोई सेकंड क्लास प्रजा, कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ क्लास। तो फोर्थ क्लास प्रजा की लिस्ट में जो आने वाले 4.5 लाख में है, वो अंतिम विनाश तक संपूर्ण बनते रहेंगे, और जब संपूर्ण बनेंगे तो अपने फॉलोअर्स को निकालेंगे। इसलिए ये पक्का होता है कि जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो मनुष्य से क्या बनती हैं, देवता बनती हैं, वो महादेव को पहचानेंगी और उसमें शिव को पहचानेंगी। बाकी जो द्वापर युग से आने वाली आत्माएं हैं, वो निराकार शिव परमात्मा को निराकार के रूप में ही देखेंगी, मानेंगी, या साकार रूप में मानेंगी, निराकार रूप में मानेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तुम बच्चों की, तब तक बाप का पार्ट ज्ञान सुनाने का चलेगा। क्योंकि जो कृष्ण बच्चा है, वो कब बुद्धि में ये बात बैठाता है कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, 18 में। और जब बुद्धि में ये बात बैठती है कि मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, तो पुरुषार्थ चलता रहेगा या खत्म हो जाएगा? चलता रहेगा। और तब तक चलता रहेगा जब तक वो आत्मा पूरा एडवांस ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में धारण न कर ले। उस बच्चे की ये शिफ्ट है कि वो राम का सहयोगी सबसे बड़ा बनता है और रावण राज्य का विनाश में सहयोगी बनता है। जब रावण राज्य का विनाश होता है तो उस समय पूरी राजधानी तैयार हो जाती है। 500 करोड़ की दुनिया के बीच में पूरी 9 लाख आत्माओं की राजधानी तैयार होती है, जिसमें 4.5 लाख साकार और 4.5 लाख सूक्ष्म शरीरधारी। तो जो 4.5 लाख की संपूर्ण राजधानी स्थापन होती है, वो राजधानी नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा है। दुनिया के दूसरे धर्म वाले भी पहचानेंगे, जानेंगे, मानेंगे कि जन्नत नाम की कोई चीज भारत में है। मुसलमान लोग मानेंगे और क्रिश्चियंस भी मानेंगे कि पैराडाइज नाम की कोई चीज भारत में है, जहां लॉर्ड कृष्ण का राज्य है, संगमयुगी कृष्ण का राज्य। तो जब बच्चा और बाप दोनों ही संपन्न बन गए, सृष्टि का पहला पत्ता, उस पहले पत्ते को जन्म देने वाला बीज बाप, दोनों ही संपन्न बन गए, बाप समान बन गए, तो शिव ज्योति बिंदु की इस दुनिया में जरूरत है, है? जरूरत नहीं। बाकी जो द्वापर युग से उतरने वाली आत्माएं हैं, वो तो साकार में निराकार को तब मानेंगी जब विनाश का डंडा उनके ऊपर बजेगा। डंडे से भूत भाग जाते हैं, ऐसे ही है। वो दूसरे धर्म की आत्माएं सहज मानने वाली नहीं है, वो निराकार को बिंदु रूप में याद भी नहीं कर सकती। निराकार को याद करना सहज या साकार में निराकार को याद करना सहज? तो वो जो आत्माएं द्वापर के आदि से ही षष्ठी पर उतरती हैं, वो निराकार को मानती तो हैं, लेकिन निराकारी स्टेज में टिक नहीं सकती। ये शूटिंग यही होती है, सारी दुनिया उस विश्व पिता को मानेगी और मानेगी भी तो याद भी उसी को करेगी। इसलिए कहा जाता है सबका दाता राम, माना 500 करोड़ जो भी मनुष्यों की सृष्टि है उनमें चाहे इस्लाम धर्म की आत्माएं हो चाहे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हो, सब धर्मों की जो भी देह अभिमानी आत्माएं हैं आत्म की स्थिति को नहीं प्राप्त करती हैं, इसलिए स्वर्ग में नहीं आती हैं। वो देह अभिमानी आत्माएं जब तक धर्म पिताओं की धारणाओं को फॉलो करती हैं और फॉलो करते करते उनकी संख्या लाखों की तादाद में हो जाती है, तब राम वाली आत्मा और उनका ग्रुप उनके बीच में आकर के जन्म लेता है और उनके राज्य की स्थापना करता है। क्या निराकार बाप से किसको वर्षा मिलता है? उन आत्माओं को वर्षा मिलता है जो निराकारी स्टेज में टिक जाती हैं, और जो निराकारी स्टेज में टिकते ही नहीं उनको साकार बाप से वर्षा मिलता है। उनकी राजाई शिव बाप स्थापन नहीं करते, कौन स्थापन करता है? प्रजापिता और उसका ग्रुप स्थापन करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं सबका दाता राम, चाहे कोई भी धर्म का हो, उन सब धर्म वालों को मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उससे राजाई का वर्षा मिलता है। ओम शांति।